आए थे तो मेरे लिए क्या तोहफे लेकर के आए थे। इस वाणी को बैठ करके इसकी तुलना करेगी और फिर संसार वालों के ग्रंथों से तोलेगी, हाय है ये वो वाणी है जिसके बिना सारा संसार सूना था, ये वो वाणी है जिसके बिना करोड़ों बार दुनिया बनी और बन के मिट गई, केवल इस वाणी के आ जाने से ही कारण इस वाणी का बन गया कि अब के बार ब्रह्मांड मिटेगा नहीं, सारे ब्रह्मांड को वो प्राणनाथ भाव सागर से, ये वाणी की कीमत है। इस वाणी के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड अखंड होना है और इस वाणी की बरकत से ही ब्रह्म सिद्ध की याद करके वापस परम धाम में जानी है, यानी वो तोलेगी धाम के इस धन को और फिर दृढ़ करेगी कि मुझे अब भागवत सुननी है। नहीं समझे? गरसी दृढ़ निराधार, वो निर्णय करेगी इसको तोलेगी और दुनिया के ग्रंथों को तोलेगी कि रामायण का पाठ करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, भागवत का पाठ करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उनको यदि मैं पढ़ूंगी तो क्या मिलेगा, तो अथर्ववेद ने स्वयं कहा है कि दुनिया के जितने ग्रंथ हैं वो पराशक्ति के नहीं है, वह अपराशक्ति स्वप्न की बुद्धि से बने हुए, इसलिए सपने की बुद्धि के ग्रंथ जो है हमको निराकार से आगे ले जा सकते नहीं। और ये एक परमधाम की वाणी है जिसके ऊपर यदि अमल करके हम चल पड़ेंगे तो बेड़ा भाव सागर से पार होगा। अब वो इसकी तुलना करेगी, फिर क्या करेगी, निर्धार करेगी, एक तो दृढ़ता रहेगी और उसके बाद निर्णय लेगी कि अब मुझे कौन से ग्रंथ का सहारा ले, किस वाणी को सुन करके जो है हम वापस अपने प्रिया के पिया के धाम में पहुंच सकते हैं, जो सुहागन है परम धाम की, जिस सुंदर छात्र के अंदर जिसका ईमान पक्का है वो इस वाणी को तुलना करके फिर इसके ऊपर दृढ़ता के साथ अपना निर्णय लेगी। क्यों? ये जनरल बात है, सुंदर छात्र जी 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य की प्राप्ति होती और मनुष्य मिला है भाव सागर से बाहर उतरने के लिए। आप इस वाणी को और दुनिया के ग्रंथों को तोल करके देखिए कि कौन सी ऐसी वाणी है जो हमें 84 लाख के बंधनों से छुड़ाकर, क्योंकि गीता के अंदर थोड़ी सी गलतफहमी इस बात की आ जाती है, 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जब ये कहा गया द्वा एम पुरुषो लोके क्षर अक्षर था क्षरा सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षरा उत्तते उत्तम से कन्या परमात्मा की रहता, तो फिर 20वें श्लोक में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन उत्तम पुरुष सबसे परे तो है पर जो वेदों के ज्ञानी लोग हैं और मेरे भक्त जन है वो मुझे ही उत्तम पुरुष मानते। अब सुंदर सा जी सुबह कहा था लेकिन कोई भी सुंदर सा राजन स्वामी के पास पूछने के नहीं ले गया कि एक कॉपी कृष्ण का भाई जरा मंत्र तो बता, क्योंकि दर्द ही नहीं, लेना देना क्या। अब यदि और निर्णय लेना है तो यही कृष्ण बाद में क्या कहता है, छठा खंड महाभारत अश्वमेध पर्व और श्लोक नंबर 13 से 9 वो भी महाभारत का छठा खंड है, यहाँ पर आश्रम में है, जिसने देखना है राजन स्वामी जी के पास चले जाओ, ग्रंथ सारे उनको दे रखे और एक एक प्रमाण उनको बता रखा है, वो आपको खोल के बता दे। जब शांति हो गई, युद्ध खत्म हो गया, अब अर्जुन कहता है भगवान यहां पे बैठ जाओ, जरा युद्ध में तूने बताया था कि भाव सागर से पार करने की शक्ति उत्तम पुरुष के पास है, अब जरा मुझे बता कि मैं कैसे उसका ध्यान करूं और वो कैसे मिल सकता है। तो वही कृष्ण क्या कहता है अर्जुन, तो वो ज्ञान जो तुम्हें बताया गया था यदि तुम्हें ज्ञात नहीं रहा, जैसे हम चर्चा सुन के गुजरते हैं, तो तुम्हारे जैसा नीच कोई दुनिया में है ही नहीं। जिसको ब्रह्म के ज्ञान की चर्चा सुनाने के बाद यदि भूलता है तो नीचों में नीच पुरुष है, और वो मैंने नहीं कहा था, वो मेरे से कहलवाया गया था, मैं जानता ही नहीं तुझे कहा क्या था। ये महाभारत यहाँ पर है, अश्वमेध ग्रंथ छठा खंड, अश्वमेध पर्व श्लोक 9 से 13। अभी या सवेरे राजन स्वामी जी के पास चले जाओ, आपको महाभारत दिखा देंगे, पढ़ लेंगे। विचारिए तो निर्णय करेगी परमधाम की जो ब्रह्म शक्ति, क्योंकि ईमान वाली सरदार सखी है जो करसी की तरोशन, तो वो क्या क्या चीज लेगी? सबसे पहले ईमान लेगी, फिर जो परम धाम का धन राजी महाराज लेके आए इस वाणी को वो तोलेगी, और तोल करके वो दृढ़ता के साथ निर्णय लेगी। क्या निर्णय लेगी? और जरा ध्यान के साथ क्या क्या तोलेगी, क्या क्या चीज का निर्णय करेगी। पहले तोले बुद्ध जागृत, क्योंकि जब वो इस वाणी को मंथन करेगी तो सबसे पहले उसको क्या पता चलेगा कि ये कौन सा ग्रंथ है? जागृत बुद्ध का ग्रंथ है। तो वो सोचेगी भाई जागृत बुद्ध कौन सी है, आज दिन तक तो इसका नाम नहीं सुना था, तो ये जागृत बुद्ध का ज्ञान कहां से आ गया? ये वही जागृत बुद्ध है जिसके लिए गीता में क्या कहा कि अर्जुन मेरी दो शक्तियां, एक हरा और एक अपरा। अपरा जो है वो मिथ्या है, जिससे मैं स्वयं श्री कृष्ण विष्णु भगवान करे 16 कला संपूर्ण, कि मैं और ये सारा संसार का ज्ञान जितना भी है ये मिथ्या है। जब तक पराशक्ति का ज्ञान जो यहाँ के अंधकार को नहीं मिटाता और परे का उजाला नहीं करता, तब तक कोई भी प्राणी भाव से पार जा नहीं सकता। तो तात्म ये न जाना थी सच्चिदानंद लक्षणम, संसार के ग्रंथों में ये वचन लिखे। वो जागृत बुद्धि क्या करेगी, क्या होगा जागृत बुद्धि के ज्ञान में और यहां के ग्रंथों के ज्ञान में? लिखा तो है लेकिन उसको खोल करके आगे का कोई भेद बता सकता नहीं। तो वो बोलेगी कि ये जागृत बुद्ध का ऐसा ज्ञान है, तारतम क्या है जो भेद गीता में लिखे हैं पर खुले नहीं, तारतम उसके भेद खोलेगा। ये जागृत बुद्ध की पहचान करा रहा हूं। जो बातें मोहम्मद साहब ने कही, क्या भाई मैंने 90,000 शब्द अल्लाह ताला से सुने और कहे, 30 का उन्होंने मुझे अख्तियार दिया, सो मैंने आके कह दिए शरीयत का जो है कुरान मैंने बना दिया, और उसके बाद 30 का उन्होंने मुझे अख्तियार दिया था पर मुझे कोई मिला भी नहीं, लेकिन इसलिए मैंने वो खोले नहीं। और 30 का मुझे क्या हुक्म हुआ था कि उसको तुझे खोलने का भी अधिकार नहीं है, वो खुद जब आएगा तो वो खोलेगा। वो जो खोलेगा तो वो कौन होगा? ध्यान देना, खुदा की गवाही खुदा ही देवे, खुदा की गवाही खुदा ही देवे, बयान करे खुद लेकिन हुक्म सिर लेवे। क्या कहा कि ऐ दुनिया वालों, जब खुदा आएगा दुनिया में आपकी इन बातों के भेद खुद खोलेगा, और भेद खोलते खोलते फिर तुम्हारे ऊपर पर्दा डाल देगा, भाई हम तो कुछ नहीं है, जो कुछ है राजीव राय का हुक्म है, हुक्म सिर लेवे। तो फिर भी दुनिया उन्हें ना पहचान पाएगी कि ये वाणी लाने वाला कौन है। ये जागृत बुद्ध को लाने वाला खुद अक्षरा ही है, जो जबराइल और असराफील दो फरिश्ते कहे। ये वो फरिश्ते अक्षर के पास सत स्वरूप में रहते, लेकिन अक्षर कभी भी उसको हुक्म दे नहीं सकता, क्योंकि वो राज्य महाराज के ही अधीन रहते। पर वो आज दिन तक दुनिया में क्यों नहीं आए? क्योंकि जब तक अक्षरातीत तो दुनिया में नहीं आते तब तक वो दोनों फरिश्ते कभी भी उतरते नहीं। अक्षर की पांच वासनाएं जिसमें शिव, कबीर, शंकर, सनंदना और महादेव जी और विष्णु भगवान है, ये आते हैं, चर्चा ज्ञान देते हैं, लेकिन दुनिया को कर्म कांडों से आगे जाने देते नहीं। अब वो आए, इतने दिन संसार में सुंदर सा जी सपने की बुद्धि चल रही थी, तो इस वाणी से जब वो तोलेगा तो उसे ये चुभाई मिलेगी कि इतने दिन संसार में बुद्धि बुद्ध सुपन। इस वास्ते जो है अब ये देवी देवताओं ने हर ग्रंथों में कहा कि जब तक सपने से आगे जागृत बुद्ध दुनिया में नहीं आ जाती तब तक कोई भी हकीकत में शर से परे जाने का रास्ता बता सकेगा नहीं, अखंड में कोई जा सकता नहीं जागृत बुद्ध के बिना। हम जरा ध्यान के साथ, अब वो क्या क्या तोलेगा, पहले तोले बुद्ध जागृत, पहले किसको तोलेगा, धाम के धन को वाणी को, फिर क्या तोलेगा जागृत बुद्ध में और सपने की बुद्धि में अंतर क्या है, ये सपने की बुद्ध के हजारों ग्रंथ है, हजारों तरीके बताए, कोई निराकार की भक्ति कहता है, कोई साकार की कहता है, कोई कणकण में कहता है, कोई पिंडे सुब्रमण्य कहता है, अनेकों प्रकार के रास्ते हैं, पर कोई भी रास्ता भव से पार ले जा सकता इसमें। और इस वाणी में क्या है कि यदि जिस दिन कोई तारतम लेकर उस अक्षरातीत को अंगना भाव से पतिव्रत साधन से जीव भी सुमरण करेगा तो वो भाव सागर से पार, ये फर्क है दुनिया के ग्रंथों में और इस वाणी पर चलने में। दुनिया के जीव की बात कह रहे हैं, अब जब उसके बाद आगे जाएगा, ध्यान दो जरा आगे एक शब्द को बोलो, ए है जागृत बुद्ध, पीछे तोले धनी आवेश, कि भाई फिर सोचेगा भाई ये जागृत बुद्ध तो है लेके कौन आया, तोले के धनी का आवेश आया तो वो तोलेगा इस बात को, भाई ये जागृत बुद्ध आज दिन तक दुनिया का देवी देवता क्यों नहीं ला सका, तोलेगा कभी आज दिन तक दुनिया में हजारों पैगंबर तीर्थंकर आए, विष्णु के भी अवतार हुए, तो जागृत बुद्ध क्यों नहीं ला सका, तब उसको इस वाणी से पता चलेगा कि ये वाणी जबराइल और असराफिल के बिना आ सकती नहीं, और वो धनी के आवेश की बातें हैं, तो आवेश ही है राजीव राय का जो इस वाणी को लेकर के धरती में जाते, पहले किसको तोलेगा ईमान, फिर इस वाणी को, फिर इसके बाद वाणी को लाने वाली जागृत बुद्धि को, फिर बुद्धि को लाया कौन सा है, वो राजीव राय के आवेश को तोलेगा कि भी जागृत बुद्ध तो थी योग माया के ब्रह्मांड में, फिर इधर ला क्यों नहीं कोई सका, तो अब पता चला कि ये जागृत बुद्ध उस अक्षरातीत के आवेश का स्वरूप है, जब तक वो नहीं चाहते तो वो कभी भी वाणी दुनिया में आ सकती नहीं थी। फिर क्या बोलेगा कि चलो भाई राजी महाराज का आवेश भी आया है तो आगे बढ़ो, और तोले इश्क तारतम, अब यहां दो रास्ते हो गए, अब इस वाणी से क्या तोलेगा, यदि इसमें तारतम भी लिखा है और इसके बिना इसके अंदर इश्क भी रखा है, ये तारतम क्या है और ये इश्क क्या है, सुंदर सा जी अब जरा समझने का विषय आ गया, सावधान साक्षी बोलो क्या कर जरा, क्योंकि यहां हम सुंदर साहब की पटरी भी कुछ उधड़ी सी हुई है, हमें तारतम मिल जाता है तो फिर हम बड़े खुश हो जाते हैं, अब क्या है अब तो तारतम की टिकट हमारे पास है और सीधा हमने परमधाम चले जाना है, तो यहां कुछ फर्क गड़बड़ी का है, दार्तम ब्रह्म सिद्धियों को परम धाम नहीं ले जाएगा। सारे गुम हो गए, तभी तो सारे कहते हैं इनकी चर्चा ना सुनी, ये उल्टा रास्ता ही सुना। ये किसने लिखा है? ये हमने नहीं लिखा भाई। दार्तम ब्रह्म सिद्धि के लिए आया है कोई तो भाई सवेरे मुझे बता देना, और मैं तुम्हें बताता हूं कि ये केवल जीवों के लिए आया। निज नाम सोई, बोलो बोलो, जाकि
सब
दुनिया राह देख है। और जो तारतम लेके परमधाम जाना चाहते हैं उनके लिए क्या हुक्म है? कि वो दुनिया को मुक्ति देने के लिए उतर रहे हैं। मुक्त देसी ब्रह्मांड को कौन आए? ब्रह्म आत्म सत। तो किसके द्वारा देंगी? दुनिया के पास, दुनिया को तारतम ही भाव से पार करेगा, क्योंकि तारतम के अंदर अक्षातीत का नाम है, और उस नाम के बिना कोई जीव भाव से पार हो नहीं सकेगा। तो वाणी से पता चल गया भाई, एक तो है ईमान और दूसरा क्या है? इश्क। इश्क जीवों को आना नहीं, इश्क के बिना रह सकती नहीं। दो रास्ते, जीव भाव से पार किसके द्वारा होंगे? दार्तम से। और ब्रह्म सिद्धि परम धाम किससे जाएगी? इश्क से, क्योंकि इश्क ही हमारे से छीना है परम धाम में। जब तक वो नजर राजीव राय की इश्क की मिलती नहीं, तब तक पर आत्म के साथ आत्म जुड़ती। ये पता चला किससे? इस जागृत बुद्ध से। कि फिर जागृत बुद्ध को लाया कौन? आवेश लाया। तो आवेश से दो चीजों का पता चला, इसका एक दार्तम और एक इश्क। वो जो ईमान वाली है वो अब तोलेगी। एक पलड़े है ना, इधर रख दिया दार्तम और इधर रख दिया इश्क, वो नीचे पलड़ा बैठ गया, दार्तम ऊपर चुटकियां खा रहा। इश्क बड़ा रे सबन से, नहीं कोई इश्क समान। इक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। सुना है संसार, वीरान है संसार उसके इश्क के बिना। ये इश्क संसार की गंदी नालियों वाला न समझ लेना भाई, कि ये उस परम धाम की बातें। वो भी जाके स्वामी जी ने खिलवत भी जाहिर कर दी। फिर जाके कहीं सोचने लगे, भाई खिलवत जाहिर तो कर दी है, और सुंदर साहब को बताए तो सही, आगे इश्क क्या है? तो फिर बताते नहीं, फिर भी क्या कहते हैं? आओ रे आप कहो इश्क की बात। बात कह रहे दे कुछ नहीं, पाठ नहीं मथन। पास से काम चलेगा तो ये फिर अभी पढ़ देंगे, अगर अगला डाल रखा है वो भी जरूरी, उसके बिना ये नहीं मिलना। दार्तम के बिना इश्क नहीं आना, पाठ के बिना ये मथन नहीं होना। घबरानो ने करे पाठ फिर मथन, अभी बड़े चार सौ नहीं था दोनों तरफ ना। हाँ जीव है ना कि नहीं है? आत्म किस पे आगे बैठी है?
जीव पे।
तो पहले जीव को नहीं खड़ा करोगे तो फिर आत्म कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले तात्म, इसलिए पहले पाठ है। तात्म का पता लग गया, अब उसके अंदर इश्क छुपा है, वो आत्म को खड़ा कर दो। क्योंकि जब जीव बल करेगा तो जीव सारे संसार से नाता तोड़ेगा, जब तब आत्म फर करके आगे बात करती है। ध्यान तो सुनने की बात थी सुंदर साहब, प्राणनाथ आए हैं तीन के वास्ते, जीवों का प्रभु आया है और ईश्वरी सृष्टि का महाप्रभु आया है और ब्रह्म सृष्टि का धाम का धनी खावन आया। इसलिए क्या कहा, इस वाणी से पता चल रहा है कि भाई वो कहते हैं मैं तीनों के लिए आया हूं, ब्रह्म सृष्टि को सुख घर का, तो घर का सुख इष्ट से मिलेगा कि तारतम से, और ईश्वरी को देनी सुंदर वो ज्ञान से जागेगी, क्योंकि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शक वर्तत सो सुंदर अक्षर को नहीं थे, उनको सूद देनी है, उनको ज्ञान देना है, इसलिए ईश्वरी सृष्टि हमेशा भक्ति करेगी। भगवान जी आवत नित रोज आते हैं और प्रणाम करके पीछे हाजरी ड्यूटी भक्ति है उनकी, अक्षर की सुरता को भक्ति करते हैं। और उसके आगे अगर अक्षर ब्रह्म को इष्ट का पता होता तो वो कभी भी रंगमहल की लीला को मानता नहीं, रोज देखा करता, रहता परमधाम में है, लेकिन इष्ट की शुद्ध न होने के कारण से राजीव राज की दीदार के लिए भी शून्य है। वो इष्ट है जो परमधाम में लेकर के चलता है। निराकार के पार क्या चीज लेके जाएगी, बोलो सार्थम भूले हुए इसको हर जगह इष्ट, जैसे 500 का नोट है सभी लेनी दो आने की दे दो, सुन तो लिया इसको पता नहीं कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना, इसको ठोक दिया, यहां से पार जाने के लिए तारतम ही चलेगा, तारतम से आगे क्या चलेगा बोलो, आगे भक्ति अक्षर तक की धाम में पहुंचाएगी और उसके बाद इश्क चलेगा जो रंग महल में लेके जाएगा तीनों सीढ़ियां। अब तोलना है, ये ईमान वाली जो सखी है वो तोलेगी क्या, और तोले इश्क तापन, तो जो आत्म है परमधाम की उसको पता है कि मेरे परमधाम के अंदर लीला प्रेम ही प्रेम, इश्क के बिना और कोई वस्तु मुझे नहीं की चाहिए। तारतम से होश आई, तारतम से क्या आ गई, होश आई कि मैं इस दुनिया की नहीं और दुनिया में कोई भी मेरा नहीं, अपनी पहचान, अपने धनी की पहचान और अपने निजे घर की पहचान, ये तारतम है। और उसके बाद पहुंचने के लिए आत्म को क्या चाहिए, तारतम से शुद्ध आई कि नहीं आ गई, तारतम से शुद्ध आ गई जो देवचंद जी को नहीं थी, जब भया बस अज्ञानवान तब मन उपजो ए विचार, मैं कौन कहां से आईया कहां है मेरा, तो श्याम जी के मंदिर में तारतम से शुद्ध आ गई कि मैं ना देवचंद्र हूं और ना मैं राधिका रानी हूं, मैं परम धाम की श्यामा हूं और ये मेरे धाम के धनी हैं। तो ध्यान के साथ कलेजे पे थाम के हाथ जरा, श्यामा जी को दीदार परम धाम का नहीं हुआ, घबराना नहीं जरा, महम्मन कहे मैं अकेला रोए थी मुझमाहे, चला अर्श महराज को पर पहुंच सकिया, वो अर्ब वाले की बात नहीं सुन रहे जाना, वो अक्षर की आत्म है, कहीं जरा अपनी बुद्धि से जी हम अपने अर्थ कर रहे थे, वो महम्मन था, अक्षर के साथ परम धाम की आत्माओं सारे बैठे यहाँ की अकलों वाले, श्यामा जी को परम धाम का दीदार नहीं हुआ, इसलिए क्यों अहंकार था कि मैंने भक्ति की है, रू अल्लाह करी उनकी उनमें मैं रह गए, राती अंदर बैठे हैं और फिर भी मांग रहे थे कि मेरे से जागरी कराओ, मेरे से कुछ नहीं मिला, लिखा था पहले से ही, पहले तन में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा तन जब धारण करेंगे तो 30 वर्ष नहीं 40 साल बादशाही क्षमा में रहने की होगी, 11वीं के 10, 12वीं के 30 श्यामा जी महारानी की बादशाही वर्ष 40 ईसा बादशाही पर चले, उसके बाद राजीव राय का राज शुरू होगा, बहुत भेद है सुंदरता दीवानी के अंदर। आप ध्यान के साथ, जहां इश्क होता है वहां उसके बिना और कुछ नजर आता नहीं। यदि प्रार्थना भी आ गया, रात भी अंदर बैठ गए और मैं खुद ही नहीं मिटी, तो भी परम धाम की प्राप्ति होगी नहीं। श्यामा जी के साथ ही, क्योंकि ये क्या होता है कि जब हम सारी उम्र चर्चा सुनते हैं, सुनाते हैं, लोगों को तालीम देते हैं, तो फिर अहंकार क्या है, क्या बकवास कर रहा है। हम सारी उम्र से जो है लोगों को तालीम दे चुके हैं, हमारे पास ये है, आया हमको सिखाने, ये क्या है अहंकार। इलम है धनी का दर्द नहीं, जहां धनी का दर्द और प्रेम होता है वहां अहंकार। आशक को जब माशूक मिलता है, सब कुछ मिटा देना पड़ता है। सुंदर शाह जी, मिटा देना पड़ता है। मोमिन कहिए वहां को जो छोड़े चौड़े तबक, मां सिवा अल्लाह के और करे सब तरफ, सब कुछ मिटा देगा अपने आप को, उसके मुंह से फिर मैं नहीं निकल सकता। ध्यान के साथ, क्योंकि इश्क की तुलना आ रही है, तापन से क्या होगा, भक्ति होगी, सुमरन होगा, पांच होंगे, पर पिया का दर्द कलेजे में नहीं। अब एक एक फर्क को जरा सुनते जाओ। तापन क्या देता है, शुद्ध देता है, पहचान कराता है, याद दिलाता है कि परमधाम में इश्क रवज हुआ, हमने खीर मांगा था, ब्रिज में आए थे, ये शुद्ध देता है। रास में आए थे, हमारी चाहना पूरी नहीं हुई, ये भी पहचान देता है। हमारे लिए ब्रह्मांड बना गए, ये भी शुद्ध देता है। पर प्रिया का दर्द तारतम नहीं देता। तारतम जागृत बुद्ध है, जगाता है, शुद्ध देता है, और इश्क प्रिया का दर्द देता है, शुद्ध मिटा देता है। फर्क इतना, कई बार चर्चा बताई, जब तक अकल ठिकाने रहती है तब तक इश्क होता नहीं, और जब इश्क होता है तो अकल रहती नहीं। इसीलिए इश्क क्या होता है, अंधा। जब इश्क नहीं रही, आदमी अंधा हो जाता है। इश्क में इश्क क्या करता है, अंधा। इश्क क्या करता है, बहरा। इश्क क्या करता है, गूंगा। जब इश्क होता है तो दुनिया की कोई आवाज सुनाई देती नहीं। जब इश्क होता है तो माशूक के बिना और कुछ मुंह से निकलता है ही नहीं। इश्क दुनिया से न्यारी वस्तु है सुंदर छात्र जी। पर अब वो ना लाते राजी महाराज, तो अब स्वामी जी कहते हैं वो फिर मोमिन जो परम धाम का है वो तोलेगा कि इश्क में और तारतम में अंतर क्या है। अंधकार को मिटा करके उजाला करना, पहचान कराना किसका काम है, तारतम का। और आगे धनी का दर्द कलेजे में लगाना, ये किसका काम है, इश्क का। जो परमधाम की सुहागिन नार है वो इन चीजों को बैठ करके तोलेगी कि अब मुझे किस रास्ते पर चलना है। ध्यान के साथ, और तोले इश्क तारतम, जब इश्क को तोलेगा तो फिर क्या होगा, तब पलटे उपलो भेष। तब ये उपला भेष जो दुनिया की मैं, खुदी, गुमान, अहंकार, मेरा संसार, मेरे बच्चे, ये वो में जो प्राण अड़े हुए हैं, जब उस इश्क की जुबल लगेगी तो इधर से पासा पलट करके पासा ध्यान गुण अंग इंद्री उस तरफ लग जाएगी। ये भेष में हमारा जो है पलट जाएगा। जो 24 घंटे हमें माया की, संसार की, ग्रस्त की, दुनिया की ही लगी रहती है, जिस दिन धनी के इश्क की पहचान हो जाएगी कि उस प्रीतम से मिलने के लिए उसकी इष्ट और तड़प के बिना और कोई रास्ता है। नहीं है, इसकी जब वो तुलना कर ले गया और उसके दिल में जब ये बात बैठ जाएगी तो उसका उपरला वेश भी पलट जाएगा, रास्ता उसका रहनी उसकी, एक बदलने का मतलब क्या, रहनी उसकी ऑटोमेटिक जो है बदल जाएगी। यदि वो रहनी बदल गई तो समय लेना इश्क मिल गया, और रहनी मिली नहीं हमें इतना इश्क मिल गया, बस राजी की थोड़ी वानी राखी मराय का प्यार इश्क मिल गया, आप तो मोरला की हम परम धाम के हो गए ना। इस वजह से कुछ बदलना, इसका भेष बदलेगा। तो जब आशिक कोई राजी मराय का होगा तो दुनिया उसको दिखेगी, दुनिया की बातें उसके कानों तक असर करेगी और दुनिया की बातें उसकी मुंह से फिर निकलेंगी नहीं। जब ये हालत हो जाए तब समझ लेना अब मेरी आत्म को कुछ कर पपिया की लगी है, कुछ इश्क धनी का मेरी आत्म को मिला। ध्यान दो जरा, एक एक शब्द तोलिए सुंदर सा जी, और तोले इश्क तारतम तब पलटे उपलो भेष, जब उपला भेष बदल जाएगा यानी रहनी बदल जाएगी, रहेगा तो दुनिया में और ध्यान हर वक्त धनी में लगेगा तो फिर लागी वाली बोलो बोलो कछु, फिर क्या हो गया बिटी रहे हो, बिटल जाएगी दुनिया से, शुद्ध बुद्ध बिचरी बिचली बिचली किसको कहते हैं, अरे बिटल गया पागल हो गया इसका दिमाग क्रैक हो गया, दुनिया क्या कहेगी इसका दिमाग क्रैक है, बिटल जाता है दुनिया से आदमी जब इश्क धनी का लगता है, ये हालत शुद्ध उसकी हो जाएगी, ये है भेष का बदलना। और आगे बढ़िए जरा धान के साथ, जब ये चीज हो जाएगी फिर क्या होगा, तब तोलसी वासना और तोलसी हुकम, तब अपने आप को तोलेगी कि परम धाम की आत्म यानी वासना कौन है और राजी मनाय का हुक्म क्या, फिर तोलेगी, क्योंकि वैसे तो हम एक एक बात में क्या कहते हैं, अरे भाई अरे टिकट तो ले ली थी तो राजी का हुक्म ही नहीं था, हम रह गए नहीं, अच्छा काम हो गया तो हमने कर लिया और कुछ गलत हो गया तो बोलो 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 राजीव राय का हुक्म सारे गलत काम करने के लिए यहां ये आप जिस वक्त उसको इन चीजों का पता चल जाएगा तो फिर पता चलेगा कि राजीव राय का हुक्म हमारा हजूरी बन के खड़ा है, हम उसके अधीन नहीं है, हुक्म हमारे का दिया। जब ये हालत हो जाएगी तब भैया पहले नहीं, क्योंकि हुक्म जो है किसके अधीन है, राजी के या और किसके, और मैं राजी की अंगना हूं, मेरा खावंद एक नौकर लेके आता है और कहता है पटरानी जी बाजार जाना ये सारा सामान तुम्हारा ले लूं कि तुम्हें उठा के ले आए, कहते हैं अच्छा बाजार में गया, अब हुक्म किस हाकम का है उसको तो शुद्ध है कि ये बादशाह की पटरानी है और वो हुक्म क्या दे रही, आए नौकर खड़ा हो जा मैंने पानी पता से खानी, हुक्म तुम्हारे पास नहीं खड़ा होगा उधर मुंह करेगा, उसको शर्म आ जाएगी कि किस बादशाह की पटरानी है और गंदी नाली के पता से खा, वो हंसेगा मुंह उधर करेगा तुम्हारे अधीन नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि हम कौन है, हम दुनिया वालों के ताशे खेलने में बड़ा गौरव समझते, हम दुनिया वालों के साथ मीट खाने में बड़ा खूब समझते, हम शराब पीने के अंदर अपना गौरव समझते हैं, हुक्म कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। क्या परम धाम अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म की अंगना, और दुनिया में ये काम अपने धनी को कलंक लगाए और उसका हाकम का हुक्म खड़ा होके आंखों से देखे पीट चुरा के भागे, ध्यान दो पहचानो हुक्म किस लिए आया है और हुक्म कौन है, कहो लोगों की सारी उल्टी चर्चा सुनाते, हमने तो कोई चुपाई ऐसी नहीं पड़ी कि हुक्म हमारे अधीन है तो लिखो चुपाई बोल रहा। हम कहते हैं हुक्म राजी महाराज के अधीन। कहा किसने तुमको कि हम तो हाथों कम के, कब? अब छठे दिन में नहीं। स्वामी जी कहते हैं सुंदर था, सो को दिया मैं तुमको, ये सो को दिया मैं तुमको और खुले ना बिन तुम, जब मेरी सुध दोगे औरों को तीत चलेगा तुम्हारा हुक्म, हुक्म तुम्हारे अधीन होके खड़ा है। तुम्हें शुद्ध पहचान नहीं है तो वाणी का दोष है। जब अपने आप को तोड़ोगे वासना को, के वासना किसको कहते हैं, परम धाम की आत्म कहती किसको है, फिर हुक्म की तुम्हें पहचान हो जाएगी कि ओहो हुक्म तो हमारा मददगार है, हमारे बिगड़े हुए कामों को सुधार करके सीधा करने के लिए हमारे साथ आया, तब हुक्म की पहचान हो। ये नहीं कि घर में कोई बच्चा मर गया, कोई और नुकसान हो गया, अजी भाई ऐसे ढोंग चरित्र यहां से रखे हैं हम, जाके बड़े हाथ के साथ हमारा सुंदर चाह चैलेंज करता हुक्म महाराज जी का, शर्म नहीं आती, हाथ को काट नहीं देते, क्या राजी महाराज का हुक्म तो बड़े बच्चे मारने आया है क्या, ये क्या भाई मैं लिखा के बताओ। इतने ढोंग फरेब लिए, तभी स्वामी जी कहते हो सुंदर साहब जी फरेब लिए जाए मेरी रूह तो आंखां खोल दे, तेरे कानों सुने हक बक्का के बोल। तू फरेबी में खुद जान बूझ के मक्कार हो रही है, तू जान बूझ करके जो है अपने ऊपर कंबल डाल रही है माया का और रो रही है पीट रही है। सुंदर था जब परमधाम की आत्म जागृत थी तो वो वासना यानी आत्मा को तोलेगी और फिर किसको तोलेगी, हुक्म को तोलेगी और उसके बाद तब बाल तोले पलवंतियां। जब उसको हुक्म की भी पहचान हो जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगी, बल वाली हो जाएगी, फिर सोचेगी कि अब मेरे और मेरे धनी के अंदर कुछ भी अंतर है ही नहीं। ये बल तोड़ेगी कि धनी मेरे में और मैं धनी में अर्थ परस होगी, तब जाके बलवंती का पता चलेगा कि मैं आत्म किसकी हूं, मैं बीवी किसकी हूं, मैं अंगना किसकी हूं और मेरा धनी कौन है। अपने बल को बलवंती जो सकी है वो बैठ करके तोलेगी और क्या करेगी, और तोले स्वरूप खसम, अपने को तोलेगी और फिर अपने खामंद राजा को भी तोलेगी, यार मेरा खसम कौन है। जो अक्षरा दीद पूर्ण ब्रह्म सचरा नंद है वो मेरा खसम, फिर बोलो कि अंदर कितना बल आ गया और हम किसके लिए मर रहे हैं। लड़की को बुखार नहीं उतर, मेरा खामंद सूखा जा रहा है, हमारे घर में रोटी नहीं आ रही, किसका बल तोड़ रहे हो अपना है? क्या राजी का बल तोड़ रहे हो, तोलो अपने आप को कि हमें क्या तोड़ना है, हम कौन है, क्या क्या चीज राजी महाराज हमारे तरते बताते के भाई के अंदर क्या क्या चीजें स्वामी जी तुम्हारे सामने रख रहे तोलेगी। जब उसको ये पता चलेगा कि मैं राजीव राय की अंगना हूं और मेरे खामद अक्षरा दीद है और वो ऐसे हैं जो कभी मुझसे जुदा हो नहीं सकते, तो यारे धनी साए थाए मददगार हो, धनी सिर पे खड़े हो, फिर माया तमने सु। स्वामी कहते फिर बताओ, जहां अक्षरा दीद राजीव राय जिसका खामद है क्या उसको माया सताएगी, बोलो सताएगी नहीं। तब तक माया सताती है जब तक हम क्या बने हुए भेड़ बने, हर कोई खाएगा, तो कुत्ता भी खाएगा, बिल्ला भी खाएगा, शेर भी खाएगा, भिखारी भी खाएगा, क्योंकि भेड़ सबसे बुजदिल जानवर बताया जाता, कुत्ता भी उसके पीछे भागता है तो वह करती, हालांकि भेड़ बड़ी होती है और कुत्ता छोटा होता तो उसको वो भी खाता पीता। हम तभी तक भेड़े बनी हुई है जब तक अपने को पहचाना नहीं। हर कोई हमें डरा जाता है, जरा सी बात आ गई तो मेरा कि महीने डेढ़ से बड़ा घर में कष्ट आ गया। लो क्यों कष्ट आ गया, राखी को याद करना बंद कर दिया, कष्ट भेजेंगे राखी मेरा। हाँ जब राखी को नहीं याद करते और उसने अपनी याद चुरानी तो क्या करेंगे, बोलो क्या करें, कष्ट देंगे। फिर फटाफट किसको याद करेंगे, बोलो राखी को, राखी कष्ट ना देंगे तो क्या करेंगे। राजी खुशी में कोई राजी याद नहीं करते। तब स्वयं कहा ध्यान दो, तोड़े गुमान दे नुकसान, खुद राजी में नुकसान देते हैं, घर भी तोड़ते हाथ बोटे तोड़ते हैं, फिर बड़ा बड़े कहते अपने बुझाती बढ़ा एक अखंड पर राष्ट्रीय राज्य क्यों, पहले क्यों नहीं राजी को याद करते, पहले करो अपने आप को तो लो, अपने धनी को तो लो कि धनी कभी भी हमसे जुड़ा नहीं। ये है सुंदर जाति, ये है सोई सुहागिन धाम में जो कर सी रोशन। अपने पल को तो लो, अपने धनी को तो लो कि हमें राजीव राज ने भेजा है निर्माण को मुक्ति देने के लिए, हम ही मुर्दे बने पड़े हैं तो दुनिया को क्या सुख बख्शिश करें। विचार करिए अंतिम समय है, दो चरण बाकी है, दोहराता हूं अभी। सब बल तोले बलवंतियां और तोले स्वरूप खसम, तब वो क्या तोलेगी, अपने खसम श्री राजी महाराज के स्वरूप को तोलेगी कि मेरा खामन कौन है, कौन खामन अक्षरा नीत, जिसको दुनिया वाले ये नहीं जानते कि उसका नाम क्या है, धाम क्या है, स्वरूप क्या है और लीला क्या है, वो मेरा धाम का धनी है और घर हमारा अक्षरातीत है। माया को वक्त हम देखने के लिए आए हैं। ये प्रसंग ही खत्म, आगे की चर्चा कल सुबह दोहराइए।
प्यारे की जय,
और तोले स्वरूप खसम, तब तुलसी वासना और तुलसी हुकम, की तुलना होगी तब आत्म की पहचान होगी और उसको खुद पहचान होगी और तब वो हुक्म की भी पहचान, तुलना तुलासी में नहीं तुलना होगी, जब निखर करके इन चीजों को आप पहचान जाओगे। ध्यान के साथ, सब बल तोले बलवंतियां,
सब बल तोले बलवंतियां,
तोले स्वरूप खसम,
तोले स्वरूप खसामा, तोले स्वरूप खसामा।
अब इसके बाद फिर वो संबंध शुरू होगा कि सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, अब रोशन कैसे करेगा, अब रुच भाई स्वयं, क्योंकि पहले तो बल क्या है, मैं कौन, मेरा धनी कौन, ये जागृत बुद्ध क्या, स्वरूप क्या और उसके आगे इतार्थम क्या, इश्क क्या, आवेश क्या, पूरी पहचान। उसके बाद अब वो आगे जाहिर कैसे करेगी उसकी चबई का प्रसंग क्योंकि बदलता है, इसलिए चबई को बंद करें। बोलो श्री प्राण फटाफट सुंदर साजी अर्जी बोलिए, अभी समय है, उसके बाद भोजन के लिए हम लोग उठेंगे। प्यारी तुम हो तैसी
कीजियो मैं हज करूं मेरे प्रेमजी, हम जैसी तुम्हारी न करो मेरा तलब तलब जाए दीवजी, जीवना तो जीवे नहीं जा मेरे दिल की प्यासगी, से तुम हमें Vale, vale.